नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूप के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्सेंडर स्तूप उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसमें 110 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय है संस्कार, दृढ़ता, सामंजस्य, उन्नति है। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटें तथा हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान होगा। इसी बीच कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए युवा चिकित्सकों को करियर के प्रारंभिक चरण में ही सम्मानित करना महत्वपूर्ण है। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेज हो गया है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और तेहरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। नवीनतम रिपोर्ट अनुसार अजरबैजान ने आज ईरान पर अपने नखचिवान क्षेत्र पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने भी दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल और अमेरिका पर नए हमले किए। इसी बीच ईरान ने इसराइल के दिमोना परमाणु स्थल को निशाना बनाने की भी धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अब तक ईरान से 1000 से अधिक, लेबनान से 70 से अधिक और इसराइल में लगभग 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है। अबूधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सतर्क और शांत रहने, अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों और सलाहों का पालन करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में ईरानी दूतावास में भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। श्री मिश्री ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया। आईसीसी T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।